नमस्कार भारत, तारीख 10 फरवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अपील, अदालत ने मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध पर रोक को बरकरार रखा।
दिस इज अ कंप्लीट विक्ट्री फॉर द स्टेट ऑफ वाशिंगटन, द नाइंथ सर्कुलर कोर्ट ऑफ अपील्स इन अ यूनैनिमस डिसीजन।
ट्रंप ने कहा कि फैसला है राजनीति से प्रेरित।
It's a political decision and we're going to see them in court and I look forward to doing it.
So you believe the judges made a political
decision?
Tamil Nadu में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सस्पेंस अभी भी बरकरार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वॉशिंगटन डायरी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आगमन पर रोक के आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस विवादित प्रतिबंध पर बीते सप्ताह सिएटल के एक जज ने रोक लगा दी थी। अमेरिका के दो प्रांतों ने तर्क दिया था कि ये प्रतिबंध असंवैधानिक है। अदालत के आदेश के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की जमीन पर होने वाला कोई भी हमला उस तथाकथित जज की गलती होगा जिसने ये फैसला दिया है। नए फैसले के बाद ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि वो अदालत जाएंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो सैन्य बलों के कमांडर का कहना है कि काबुल में तालिबान के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कई हजार सैनिक तैनात किए जाने की जरूरत है। जनरल जॉन निकल्सन ने अमरीकी सीनेट की सैन्य सेवा समिति के समक्ष कहा है कि उनके पास पर्याप्त चरमपंथ रोधी बल हैं, लेकिन अफगान सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक बलों की जरूरत है। जनरल निकल्सन ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की समीक्षा का सुझाव भी दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। उन्होंने रूस और ईरान पर भी तालिबान की मदद करने के आरोप लगाए हैं। निकल्सन ने कहा, श्रीमान चेयरमैन, मेरे पास चरमपंथ विरोधी अभियान के लिए पर्याप्त बल हैं, लेकिन नेटो के प्रशिक्षण, परामर्श और सहयोग अभियान में कुछ हजार सैनिकों की कमी है और ये अमरीका और सहयोगी देशों से आ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीका में अपराध कम करने के लिए कई एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किए हैं। अपने अटॉर्नी जनरल के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका में अपराध बढ़ रहा है और उनका प्रशासन उस पर अभी से रोक लगाएगा। नए आदेश ड्रग गैंगों, आपराधिक गैंगों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए लाए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि देशभर में गैंगवार बढ़ रही है। न्याय विभाग के नए प्रमुख जेफ सेशंस ने कहा है कि 2015 के बाद से अपराध के आंकड़ों का बढ़ना एक खतरनाक ट्रेंड है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि 20 साल पहले के मुकाबले अपराध दर काफी कम हुई है। अमेरिका में 36 साल पहले गिरफ्तार किए गए पुएर्टो रिको के आज़ादी समर्थक लड़ाके ऑस्कर लोपेज रिवेरा को वापस अपने जन्मस्थान जाने दिया जाएगा। उनकी रिहाई बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए अंतिम फैसलों में से एक है। ओबामा ने लोपेज को दी गई 55 साल की सजा को निलंबित कर दिया था। वो निष्क्रिय हो चुके पुएर्टो रिको के राष्ट्रवादी समूह FALN के सदस्य थे। इस समूह ने 70 के दशक में अमेरिका में कई बम हमले किए थे। लोपेज मई में रिहा होंगे और तब तक उन्हें नज़रबंद रखा जाएगा। पुएर्टो रिको अमेरिका का हिस्सा है, हालांकि 5 साल पहले हुए एक जनमत संग्रह में यहां के लोगों ने पूर्ण आज़ादी को चुना था। दक्षिण अफ्रीका की संसद के बाहर सरकार और विपक्ष समर्थकों के बीच हुई झड़पों को रोकने के लिए पुलिस ने स्टन ग्रेनेड दागे हैं। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति जैकब जुमा को राष्ट्र के नाम संदेश देने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद संसद के भीतर सदस्यों के बीच लातघूंसे चले हैं। और नीदरलैंड की पुलिस का कहना है कि उन्होंने भारी मात्रा में ड्रग बनाने की सामग्री जब्त की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज अमेरिका से कर रहे हैं, जहां इस समय बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाने के सिएटल की अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को एक विवादित एग्जीक्यूटिव आदेश पारित करके 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए संघीय अपील अदालत में सुनवाई की, जिसने अदालत के इस फैसले यानी कि रोक के फैसले को बरकरार रखा। वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूसन, जिनके कार्यालय ने ट्रंप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, उन्होंने कहा,
बॉटम लाइन, दिस इज अ कंप्लीट विक्ट्री फॉर द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन।
ये वॉशिंगटन राज्य की जीत है। अपील कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है। हमारा देश कानून का देश है और हर व्यक्ति पर वही कानून लागू होता है और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। बॉब फर्ग्यूसन के शब्द। सीधे कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं अमरीका वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, सबसे पहले तो यही बताएं कि ये फैसला है क्या, विस्तार से बताएं।
जी मोहनलाल, बहुत बड़ा फैसला है ये। अगर देखा जाए तो नाइन्थ सर्किट कोर्ट जो अपील्स कोर्ट है, उन्होंने कह दिया है कि वो उस निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई थी। यानी अमेरिका में 7 मुसलमान बहुल देशों से वीजा पर आने वालों, वहां से आने वाले शरणार्थियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने एक तरह से ट्रंप प्रशासन की इस पूरी दलील को धराशायी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने यह फैसला राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए किया है और ये भी कहा था कि अदालत को इस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस दलील की कोई पूर्व मिसाल नहीं है और ये हमारी संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और साथ ही ये फैसला अदालत की 3 बेंचों की तीन जजों की बेंच है उसकी सर्वसम्मति से हुआ है, जिसे ट्रंप के फैसले की करारी, आप कह लें रिपीडिएशन या नकारे जाने के तौर पर देखा जा रहा है।
ब्रजेश, अब ये बताएं कि ट्रंप आप अब क्या करेंगे और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर?
देखें, ट्रंप ने फैसला आने के मिनटों के अंदर ट्वीट के जरिए कहा कि वो अदालत में जाएंगे, देश की सुरक्षा दांव पर है। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। ट्विटर के अलावा फिर उन्होंने कुछ रिपोर्टरों से बात करते हुए भी एक प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
It's a political decision and we're going to see them in court and I look forward to doing it.
So you believe the judges made it?
We have a situation where the security of our country is at stake. And it's a very, very serious situation. So we look forward, as I just said, to seeing them in court.
ये कह रहे हैं कि आगे देखेंगे कि क्या करेंगे।
जी बिल्कुल, वो ये कह रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है, लेकिन जीत हर हाल में उनकी होगी क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन ये बताना जरूरी होगा यहाँ कि 3 जजों की बेंच में से 2 की नियुक्ति डेमोक्रेट प्रशासन के दौरान हुई थी, यानी जिमी कार्टर और बराक ओबामा के हाथों, और तीसरे की नियुक्ति जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी रिपब्लिकन प्रशासन के दौरान। तो ये बात लोगों के गले थोड़ी मुश्किल से उतरेगी कि ये सियासी फैसला था। फिलहाल ये अमेरिका के जो नए नए अटॉर्नी जनरल बने हैं जेफ सेशंस, जिनकी मंजूरी काफी मुश्किल से हुई है कांग्रेस में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। और क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लिखने में जेफ सेशंस की बड़ी भूमिका थी, तो ये उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती आ रही है।
जी ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अपील अदालत ने मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध पर रोक को बरकरार रखा है। कार्यक्रम में रुख भारत का करते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सस्पेंस अभी भी जारी है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव चेन्नई में हैं। सत्ताधारी पार्टी AIADMK में जारी रस्साकशी के बीच कल विधायक दल की नेता शशिकला और ओ पनीर सेल्वम ने अलग अलग राज्यपाल से मुलाकात की। नए मुख्यमंत्री की चाबी राज्यपाल के पास है। तमिलनाडु का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थिति वैसे की वैसे ही है। हालांकि राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई पहुंचने के बाद ओ पन्नीरसेल्वम और वीके शशिकला दोनों से मुलाकात कर ली। पन्नीरसेल्वम के राज्यपाल के साथ करीब 10 से 15 मिनट की मुलाकात हुई, जिसके बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री खुशी खुशी से राजभवन से निकले। वहीं दो घंटों बाद जब शशिकला राजभवन से बाहर निकली तो वो उतनी खुश नहीं नजर आए। उनके साथी और प्रवक्ता भी बात करने से इनकार करते रहे, लेकिन उनके कैंप के सदस्यों के अनुसार शशिकला ने सरकार बनाने का दावा किया और राज्यपाल ने उनको इशारा किया कि वो कानूनी सलाह लेंगे। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं? हमने ये सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी से पूछा। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। ये भी हो सकता है कि राज्यपाल हर एक विधायक से मिलकर ये पूछें कि समर्थन वाली सूची में उनका हस्ताक्षर है या नहीं है। इससे उनको समय भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको शायद उम्मीद है कि शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आजकल में आ सकता है। राज्यपाल शशिकला को शपथ दिलवाने में बहुत देरी कर चुके हैं और हम नहीं समझते कि सोमवार से ज़्यादा वो इंतज़ार कर सकेंगे। ये बात तो जाहिर है कि शशिकला के पास संख्या है। ये थे एस मुरारी के शब्द। शशिकला के कैंप का दावा है कि उनके साथ 129 विधायक हैं, जिनको चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर रिसॉर्ट में रखा गया है। लेकिन पन्नीरसेल्वम के कैंप का कहना यह है कि बहुत सारे विधायक जिन्होंने शशिकला के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं वो उनके साथ हैं और उनके संपर्क में हैं। पन्नीरसेल्वम के साथी और पूर्व राज्यसभा के सदस्य डॉ. वी. मैत्रन ने कहा,
मिसेस शशिकला नटराजन हैज गिवन हर रिप्रेजेंटेशन क्लेम्स फॉर सिग्नेचर्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स।
हमारा मानना है कि विधायकों पर दबाव डालकर उनका हस्ताक्षर लिया गया है, ये कहते हुए कि वो शशिकला का समर्थन करते हैं, तो जाहिर है कि राज्यपाल उसकी जांच करेंगे। हमें यह पता है, क्योंकि जिन लोगों का हस्ताक्षर शशिकला के समर्थन में दिखाया गया है वो विधायक हमारे कैंप में आ गए हैं। ये थे डॉक्टर मैत्रियन के शब्द। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पन्नीरसेल्वम के साथ विधायकों की संख्या है या नहीं जिससे वे पार्टी तोड़ सकें। हालांकि ये बात भी साफ है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा उनके साथ है। काडर का रुख देखकर कितने विधायक पन्नीरसेल्वम की कैंप में आएंगे वो कहना अभी मुश्किल है। इसका मतलब यही है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की क्या सलाह आएगी उस पर निर्भर होगी तमिलनाडु की राजनीति। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तमिलनाडु के बाद रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सलवा जुडूम नाम के नक्सल विरोधी संगठन पर प्रतिबंध के बाद कई स्वयंभू निगरानी समूह पैदा हो गए। इन संगठनों को पुलिस व प्रशासन का समर्थन मिलने के आरोप लगते रहे। बीते करीब एक साल से ऐसा ही एक संगठन एक्शन ग्रुप फॉर नेशनल इंटीग्रिटी यानी अग्नि बस्तर में सक्रिय था। इस पर आरोप लगा कि उसके सदस्य बाहर से बस्तर आने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने भी इस संगठन पर आरोप लगाया। अब खबरें हैं कि अग्नि को भंग कर दिया गया है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल राय ने अग्नि के प्रमुख आनंद मोहन मिश्रा से संपर्क साधा और सबसे पहले यही पूछा कि क्या ये खबर सही है और अग्नि को भंग करने का कारण क्या रहा।
वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन खड़े हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे कारण कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ऐसे बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग एक बार समीक्षा करना चाहते हैं, परिस्थितियां बहुत अनुकूल सबके लिए हो जाए।
मिश्रा जी, ये फैसला आपने अचानक ऐसा क्यों ले लिया?
बहुत दिनों से घटनाक्रम ऐसा घटा था, यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी जो प्रो नक्सल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो हम लोग वो रहे थे यहाँ पर आप हस्तक्षेप ना करें। हम लोग संवैधानिक तरीके से इस चीज को मानते थे, पर बीच में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें की हम लोग का दूर दूर तक कोई जीता निखा हाथ नहीं था, तो बार बार हमारा नाम आ रहा था। और चौरी चौरा के बाद जो है गांधी जी ने भी अपना भंग कर दिया था।
आपके ऊपर तो आरोप मिश्रा जी अग्नि पर पहले भी लगे, लेकिन इस तरह का फैसला आप लोगों ने नहीं
ऐसे,
लिया
ऐसे आरोप कभी नहीं लगा। नहीं, अग्नि के ऊपर ऐसे आरोप तो बहुत कम लगे सर।
नहीं, आरोप तो लगातार लगते रहे, आपके खिलाफ शिकायतें भी लगातार होती रहीं, लेकिन क्या इसका कारण ये है कि आईजी कल्लूरी का जो ट्रांसफर हुआ उसके बाद आप लोगों ने ये फैसला किया? क्या एक व्यक्ति के कहने पर ही
आप अपना कार्यक्रम चला रहे थे?
ऐसी बात नहीं है, हम नक्सलवाद तो हम लोग झेल रहे हैं वर्षों से। ये है कि हमको चाहिए ऐसा अधिकारी जो चाहिए जो लगातार इसी डेडिकेशन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और इसको समस्या को जिस तरीके से समर्पण हो रहा था, विकास भी हो रहा था, निश्चित रूप से संविधान का भय भी ऐसे लोगों का था जो गोलियां चलाते थे, गार रहते थे, तो ये जी जो थी यहाँ पर काफी कामयाब हो रही थी।
लेकिन आप लोगों पर तो खुद ही आरोप लगातार मिश्रा जी ये लगते रहे कि आप लोग कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते।
ऐसा एक उदाहरण दे दें, मैं मान लूंगा।
कभी आपके ऊपर पुतले जलाने के आरोप लगे, कभी दूसरे आरोप लगे, और ये भी कहा गया कि आपको पुलिस का संरक्षण मिल रहा था, और अब इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है जैसे आपने कहा कि डेडिकेटेड अधिकारी की जरूरत है, यानी कि अधिकारी अब उस तरह से डेडिकेटेड नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इसे भंग करने का फैसला किया।
नहीं, हम देखेंगे ना किस तरीके से काम करते हैं, कार्यशैली देखना।
लेकिन आनंद मोहन मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक्शन ग्रुप फॉर नेशनल इंटीग्रिटी जिसे अग्नि कहा जाता है, वो अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ, वो नाम नहीं रहेगा राय साहब।
तो अब आप नाम बदल के काम करेंगे?
वो तो भविष्य देखेंगे क्या करना है।
अब आगे क्या इरादा है आपका?
आगे अहिंसात्मक तरीके से हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ तब तक बोलते रहेंगे जब तक हमारा गला नहीं दिया जाएगा जनता ने अदालत लगा के, हम बोलते रहेंगे।
तो अग्नि भंग हो गया है और उसके प्रमुख आनंद मोहन मिश्रा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। रुख उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का करते हैं। चुनावों के पहले दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर कल यानी कि शनिवार को वोट डाले जाएंगे। कल शाम इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण का चुनाव केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी, प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी जिसने कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रही राष्ट्रीय लोकदल भी इस चरण में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी है। क्या है तस्वीर, वात्सल्य राय से इस रिपोर्ट में सुनिए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सियासी संग्राम की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रही है। प्रचार का शोर थमने के वक्त तक सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगाते रहे। विकास के दावे के साथ वोट मांग रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था सुधारने का वादा करते हुए कहा,
800 नंबर भी शुरू किया पुलिस के लिए हमने, और आपका भी शुरू हो गया पुलिस का। आप फोन किसी से मिला लेना, दिन रात सुबह शाम आपका फोन उठेगा और घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंचेगी। आपकी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 1000 गाड़ी और पुलिस को बढ़ानी पड़े, हम व्यवस्था करेंगे तो हमारे लोगों की मदद करने पहुंचे।
वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अलीगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया।
आप मुझे बताओ पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए क्या किया? आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या किया? आप मुझे बताओ ये जो महिलाएं हुई है इनके लिए उन्होंने क्या किया?
पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ही वो शहर है जहां से बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को स्कैम बताते हुए हमला किया था।
आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए?
उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लगातार निशाने पर लिया।
वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक बना रहा है।
इस तीखे चुनाव प्रचार ने साबित कर दिया कि हर दल पहले चरण में बढ़त हासिल करने की कोशिश में है, जिससे बाकी 6 चरणों में होने वाले चुनाव से पहले माहौल पक्ष में किया जा सके। साल 2007 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। साल 2012 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सीटें बराबर थी। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हर तरफ बीजेपी का डंका बजा था। इस बार स्थिति किसके पक्ष में है, इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं,
सत्ता कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो इससे एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है। ये इलाके इसमें मुस्लिम कहीं पे 30-40-50% तक हैं, तो मुस्लिम्स बहुत बटने वाले हैं बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच में, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
जानकारों की राय है कि साल 2014 में बीजेपी को ध्रुवीकरण का फायदा मिला था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल को भी इसका नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। शरद गुप्ता कहते हैं,
फायदे में होना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन चूंकि बीजेपी का दलित वोट बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी का जाट वोट बीजेपी के साथ नहीं है, दूसरी कुछ पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ नहीं है, तो इसलिए जो फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है।
शरद गुप्ता की राय है कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहाँ चुनाव के पहले आखिरी 72 घंटे अहम होंगे। वो कहते हैं कि फिलहाल मुकाबला कांटे का नजर आता है और अधिकतर जगह जीत हार का अंतर सिर्फ 1 या 2 हजार वोटों का ही रहेगा।
तो पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार थम गया है। अब 11 तारीख को यहां पर वोट पड़ेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल राय। और यहीं पर कार्यक्रम में अब अखबारों का रुख करते हैं। दिलनवाज पाशा, आपने बहुत सारे अखबार समेट लिए हैं, पढ़ चुके हैं, बताइए क्या कह रहे हैं भारत के अखबार, सबसे बड़ी खबर क्या है?
सबसे बड़ी खबर है 20 साल पहले दिल्ली में हुए उपहार अग्निकांड में गोपाल अंसल को 1 साल की सजा हुई है, और ये खबर अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है। साथ ही पीड़ित परिवारों को 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि इस सजा को जो पीड़ितों के परिवार हैं उन्होंने कम बताया है। इस हादसे में 59 लोग मारे गए थे। आधार के बिना सस्ता राशन नहीं मिलेगा, और आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। यानी वो लोग जो राशन कार्ड के जरिए राशन लेते हैं सस्ती दरों पर, उन्हें अब अपना आधार नंबर जरूर देना होगा
जी।
ये एलपीजी गैस की तरह की सब्सिडी की तरह ही जो है इसको भी जोड़ने की बात की जा रही है। ये खबर भी आज अखबारों में सभी में पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का साक्षात्कार छापा है, और इसमें अमित शाह कह रहे हैं जाटों के पास भाजपा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मोहनलाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल चुनाव होना है और जाटों की भूमिका बेहद अहम है, और ऐसे में अमित शाह जी ने जाटों को के बारे में ये बयान दिया है। इसके साथ ही एक खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस में है। इसके मुताबिक भारत खेलने आई इंग्लैंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब भी वक्त मिलता है होटल में अपना होमवर्क करते हैं, और खिलाड़ियों की सोफे पे लैपटॉप लेके बैठे हुए होमवर्क करते हुए तस्वीर प्रकाशित की।
मैं तो वही सोच रहा हूँ कि भाई आप क्रिकेट खेल के आए और उसके बाद आपने लैपटॉप खोला, या फिर आप स्कूल का होमवर्क करने।
वैसे स्कूल का होमवर्क पूरी करने की जिम्मेदारी वो बच्चे ही बता सकते हैं जो स्कूल जाते हैं। गुड़गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक कर्ज देने वाली कंपनी से 33 किलो सोना लूट लिया है, और ये एक बेहद व्यस्त इलाके में ये वारदात हुई है।
33 किलो सोना
ये बदमाश लूट के ले गए हैं। तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल वापस लौट आए कल, और उनसे जुड़ी खबर है आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। शशिकला उनसे मिलने गई और बाद में ओपन ईयर सेल्फम भी मिले। अब सरकार मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी?
हमने रिपोर्ट इस पे सुनवाई थी। और एक खबर और भी है कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने जो है ब्रिटेन को एक पत्र सौंपा है कि किसी तरह भारत के जो उद्योगपति हैं विजय माल्या, उनका प्रत्यर्पण किया जाए, और ये इनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा करने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद को अपने बिजनेस से कैसे अलग रख पाएंगे, इस पर अमेरिका में खासा विवाद हो रहा है। उनकी बेटी इवांका एक डिजाइनर है और उनके कपड़ों के ब्रांड को वहां के कुछ सुपर स्टोर्स ने रखने से मना कर दिया है, जिस पर ट्रंप ने ट्वीट करके नाराजगी जताई है। इस बार की वॉशिंगटन डायरी में ब्रजेश उपाध्याय इस मामले पर चुटकी ले रहे हैं।
अमरीकी दुकानों से इवांका जी के कपड़े के हटे अमरीका में हंगामा मच गया है। बिटिया नंबर एक के साथ ये नाइंसाफी कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लोमड़ी चैनल पर ट्रंप जी की प्रवक्ता ने जाकर ऐलान कर दिया, जो लोग अमेरिका को फिर से महान बनने देने के खिलाफ है वही लोग बिटिया के ब्रांड वाले कपड़े बेचने से मना कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कह दिया कि वो तो सिर्फ इवांका जी की कंपनी के कपड़े पहनेंगी, और लोमड़ी चैनल ने भी सभी देशभक्तों से आह्वान कर दिया है कि देश की तरक्की के लिए इवांका जी के कपड़े ही पहने। #बाय इवांका। दुनिया में भी हड़कंप मच गया। बड़े बड़े नेताओं के कॉल आ रहे हैं ट्रंप जी को सांत्वना देने के लिए। मोदी जी का भी कॉल आया, केम छो डोनाल्ड भाई। ट्रंप जी ने फोन पर हाथ रख के अपने दरबारी से पूछा, ये क्या कह रहा है? दरबारी, अरे सर ये ओबामा जी के साथ भी ऐसे ही बात करते थे, आपको भी तो हिंदी की एक लाइन आती है, वही बोल दीजिए अच्छा लगेगा। ट्रंप जी फोन से हाथ हटाकर मोदी जी से कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी, अरे नहीं नहीं ट्रंप नहीं मोदी सरकार, अभी तो पंजाब गोवा उत्तर प्रदेश सब कुछ दांव पर है। खैर छोड़िए, बिटिया के साथ आपके इन लिबरल लोगों ने बहुत बुरा किया है, मेरे यहां भी इस तरह की बातें करते रहते हैं, कभी पुरस्कार लौटाने लगते हैं तो कभी देश छोड़ने की बात करने लगते हैं। ट्रंप जी, हाँ आपको तो 2-2.5 साल का तजुर्बा हो गया है, आप ही बताएं क्या करूं। मोदी जी, आप फिक्र ना करें, आपकी बिटिया हमारी बिटिया, हमने वैसे भी बेटी बचाओ अभियान शुरू कर रखा है, बस रातों रात फरमान जारी कर देता हूं कि भारत की हर बेटी अमेरिका की बिटिया नंबर 1 के साथ है और उसी के ब्रांड वाले कपड़े पहनेगी। ट्रंप जी, लोग मान जाएंगे? यहां तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, एक फरमान जारी करता हूं हजारों लोग उसके खिलाफ सड़क पर आ जाते हैं और अदालतें भी उन्हीं का साथ देती हैं। मोदी जी, अरे आप उसकी चिंता ना करें, मैंने रातों रात डीमोनेटाइजेशन का आदेश दिया और मेरे भक्तों ने चूं तक नहीं की, आप तो बस कपड़ा बेचने की तैयारी करिए, बस हमारे मेक इन इंडिया वाले नारे का ख्याल रखिएगा, कपड़े यहां बनेंगे, ब्रांड इवांका बिटिया का और भारत और अमेरिका दोनों की तरक्की, बस कपड़े बनाने की पेशगी कहिएगा कि कैश में ही दें, हमारे यहां थोड़ी कमी हो गई है। फोन की घंटी फिर से बजती है, दरबारी कहता है, सर नवाज शरीफ। ट्रंप जी, अरे इससे बात नहीं करूंगा, जो भी बात करता हूं अखबारों में वर्ड बाय वर्ड छपवा देता है। दरबारी, अरे नहीं सर अच्छे इंसान हैं, आप ही की तरह अच्छे डील मेकर हैं, वो तो इन दिनों बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, वैसे उनकी बिटिया भी उनकी वैसी ही मदद करती है जैसे इवांका जी आपकी कर रही हैं, काफी आगे जाएंगी। ट्रंप जी, हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मियाँ साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत बुरा लगा इवांका बिटिया के बारे में सुनकर, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको मोदी से बेहतर डील दूंगा। ट्रंप जी, मोदी वाले डील के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने अभी अभी तो फोन रखा है, इतनी जल्दी व्हाइट हाउस वालों ने कैसे यह खबर लीक कर दी? मियाँ साहब, अरे नहीं नहीं ये भारत की टेलीफोन लाइन्स इतनी खराब है कि लोग जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं, दिल्ली में क्या बात हो रही है वो इस्लामाबाद में साफ सुनाई देता है, और जो नहीं सुनाई देता है वो वहां के टीवी एंकर चीख चीख कर सुनवा देते हैं। मियाँ साहब, खैर मैं तो कहता हूं कि इवांका जी के सारे कपड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान को दे दें, हमारे यहां तो ये कपड़े बिकेंगे ही, मोदी पर दबाव डालें कि भारत को भी यहीं के बने कपड़े खरीदने होंगे, और इससे हमारे यहां जो रोजगार पैदा होगा उससे आतंकवाद भी खत्म, आपके अरबों डॉलर भी बचेंगे, अलकायदा आईएसआई सब खत्म। मैं तो कब से कहता रहा हूं नो एड जस्ट ट्रेड, और हां जब मोदी पर दबाव डालें तो थोड़ा कश्मीर पर भी दबाव डाल दीजिएगा। ट्रंप जी, यार इसमें कश्मीर कहां से आ गया? मियां साहब, वो हमारी फौज का उसूल है कि भारत की बात जब भी हो कश्मीर का जिक्र जरूर उठाना चाहिए, तो मैं ये डील पक्की समझूं? फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगले दिन पाकिस्तान के टीवी चैनलों के टिकर पर हेडलाइन चल रही थी, ट्रंप ने भारत को छोड़ा, पाकिस्तान के साथ डील की, कहा कश्मीर पर भी दबाव डालेंगे। अब आप सब लोग मिलकर अगर इस खबर को ट्वीट कर देंगे ना तो ये खबर सच्ची हो जाएगी। फिलहाल फेक न्यूज जिंदाबाद। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
तो ये थी अमरीकी राजनीति और उसी संदर्भ में भारत पाकिस्तान की कूटनीति पर ब्रजेश उपाध्याय की छींटाकशी। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आगमन पर रोक के आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नेटो सैन्य बलों के कमांडर का कहना है कि काबुल में तालिबान के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कई हजार सैनिक तैनात किए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अपराध कम करने के लिए कई एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किए हैं। अपने अटॉर्नी जनरल के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अपराध बढ़ रहा है और उनका प्रशासन इसे तुरंत रोकेगा। अमेरिका में 36 साल पहले गिरफ्तार किए गए पुएर्टो रिको के आजादी समर्थक लड़ाके ऑस्कर लोपेज रिवेरा को वापस अपने जन्मस्थान जाने दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की संसद के बाहर सरकार और विपक्ष समर्थकों के बीच हुई झड़पों को रोकने के लिए पुलिस ने स्टन ग्रेनेड दागे हैं। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति जैकब जुमा को राष्ट्र के नाम संदेश देने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद संसद के भीतर सदस्यों के बीच लातघूसे चले हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।